उसका तिरह दूर करने के लिए, प्रश्नित करने के लिए। किंतु जितने जितने उनको संदेश सुनाते गया है, उनका तिरह और तीव्र होता है। जो जो संदेश निकाले अपने पॉकेट से, अपनी थैली से, उनका वो भाव दूर होता है। जब अंत में नहीं हुई, इस प्रकार से उत्तरोत्तर वर्धमान अस्तूप अदृश्य पूर्व प्रेम गांधी की अवलोकन करके उद्भव मास है, मन ही मन में विस्मित हो उठे और सिद्धांत किया, ऐसा गंभीर प्रेम कहीं सुनने और देखने में आज तक हमको नहीं मिला। कभी मैंने न तो सुना और न तो देखने की तो बात दूर है। नंद बाबा का भी प्रेम देखा, किंतु गोपियों के यहां गए तो वो सब कुछ भूल गए। बहुत दूर रहकर और केवल भ्रमर और राधिका में जो वार्तालाप हो रही थी, अकेले एक तरफा राधा जी बोल रहे, बस उसी को सुन। कहते हैं कि वो भ्रमर भी कोई दूसरा नहीं था, कौन था? कृष्ण उसको सुनने के लिए खुद ही भ्रमर बन करके आए और सुन रहे हैं। इसलिए उद्धव जी उनको प्रणाम कर रहे हैं, बंदे नंद ब्रजय स्त्री नंग पाग रेणु अफिक्नता मैंने लगातार प्रणाम ही प्रणाम कर एक भूमि की वंदना करते चले जा रहे हैं। इसी रूप भाव के इसी श्लोक में पहले मुमुक्षु माने मुक्ति को चाहने वाले, संसार भय से भी जैसे 7,000 ऋषि लोग की 88,000 ऋषि लोग नैमिषारण्य में कलयुग के भय से भगे हुए आए, जब भाग करके आ रहे थे तो ब्रह्मा जी से स्तुति की कि हमारा कल्याण कैसे हो, तो उन्होंने कहा कि देखो ये चक्र इतिहास में छोड़ रहा हूं, इसकी नेमी जहां पर गिरेगी उसको नैमिषारण्य समझना और वहीं पर तुम लोग बैठ करके कथा का सत्र आयोजित करना और भगवान की लीला कथाओं का स्मरण करना और सुनना। बस कलयुग के लिए भयभीत से बचने के लिए यही एकमात्र उपाय, और कोई दूसरा जग इत्यादि के नहीं। मुनिषियों ने देखा हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या करके और यज्ञ करके उसके धुएं से उनका शरीर काला हो गया
अंदर
और अंदर भी काला। अंदर काला किस लिए हुआ? यज्ञ के द्वारा भगवान मिलेंगे तो बुद्धि भी काली हो गई, उससे नहीं मिलेंगे, भाव से मिलेंगे। ये भाव आएगा कहां से? हरि कथा के माध्यम से ये प्रेम होगा, उस प्रेम के द्वारा भगवान मिल सकते। इसलिए बुद्धि भी काली हो गई और शरीर भी काला उनका हो गया, जब वन जंगल सब कुछ काला हो गया उस भूमि से, तब उन्होंने कथा आरंभ की। तब सुख गोस्वामी लो महाराण ने उनको समस्त पुराणों का पाठ किया सुनाया। अंत में तभी तृप्ति नहीं हुई तो बलदेव प्रभु जी ने आकर किसी दोस्त ने उसके उसका गला काट दिया, क्योंकि उनका सम्मान नहीं किया गया, और उसके बदले में उसके उग्र सवासुक को बैठा दिया और सब उन्होंने भागवत वहां पर सुनाया। तो यह है मुमुक्षु, मुक्त। जो लोग मुक्त हो गए हैं, सनत सनंदन सनातन ये सब मुक्त हैं, नारद जी मुक्त हैं और भक्तों से भी महान महात्मा ये गोपियों का है, ये भक्त में नहीं है। साधारण रूप में भक्ति की 5 सीमा बतलाई गई, ज्ञाननिष्ठ भक्त, ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त,
प्रेम पर
प्रेम पर भक्त और प्रेमातुर भक्त। यहां सब तो भक्त उद्धव जी प्रेमातुर में आएंगे, ज्ञानी भक्त में सनत सनंदन सनातन आएंगे, शुद्ध भक्त में अम्बरीश महाराज आएंगे, प्रेमी भक्त में हनुमान आएंगे और प्रेम पर में पांडव लोग आएंगे, और उद्धव जी आएंगे प्रेमातुर में, प्रेम में आतुर हो जाते हैं। गोपियां इसमें कहां आई? गोपियां इन सबके वंदनीय है, भाव ऊपर वो भक्तों की कोटि में नहीं। इसलिए कह रहे हैं एता, ये जो है इन तीनों से ऊपर वंदनीय, ये सभी लोग आकांक्षा रहते हैं कि गोपियों जैसी भावना हमारे अंदर में आए, किंतु होगा नहीं, कब होगा, यदि उनकी कृपा उनके ऊपर में होगी। एता नंद ब्रज स्थित महालक्ष्मी स्वरूपा गोपियां, पृथ्वी में सफल जन्मा, इन्हीं का जन्म लेना सफल है। क्यों? वो क्या श्लोक है, उन्हीं का नयन होना यथा सार्थक है, जिन्होंने अक्षमतां फलमिदं न परमिता, किनका जन्म लेना सार्थक है। आंखें भगवान में आंखें दे वो अच्छा है, किंतु यदि आंखें दें तो सार्थक वही है। कृष्ण गोचारण करने के लिए जा रहे हैं, बलदेव जी आगे जा रहे हैं, उनके पीछे कृष्ण है। कृष्ण बंसी बजाते हुए मंद मुस्कान भरी नेत्रों से, करुणापूर्वक दृष्टि से, किसी की तरफ में ललचाई की दृष्टि से देख लिया, और उधर बंसी भी बज रही है, स्मित हास्य भी है, ऐसे मुख का दर्शन करना ही ज्ञानी की सार्थकता है। ऐसे गोपियों का कृष्ण के प्रति रूढ़ भाव, स्वाभाविक वो भाव है। मूल में भूमि जो शब्द है, पृथ्वी इत्यादि, अन्नत्र स्वर्ग या भोगों की प्रचुरता है, और बैकुंठ से भी ले लो, एक भूमि का बैकुंठ इत्यादि सब जगहों में इन्हीं का जन्म एकमात्र सार्थक है गोपियों का। होगी वही उसको सहज रूप में मिल जाएगी, इसीलिए कल हम लोगों को आज तक नहीं मिला। इसका कुछ रहस्य ये कारण है, सुनो वस्तु पर वेद का भी चरम प्रतिपाद्य विषय यह रूढ़ भाव ही है। भागवत में तो है, यह भागवत वेदों का कार, इसलिए भागवत का भी चरम प्रतिपाद्य विषय ऐसा ही रूढ़ भाव है जो गोपियों में था, इसलिए वो वेद का वेदई ये प्रेम ही वेद का परम गोपनीय चीज है, किंतु सब लोग इस चीज को समझ नहीं सकेंगे। ये वेदों में यही प्रतिपाद्य विषय है, यह ऐसा प्रेम किंतु गोपियों के उस भाव, गोपी में ऐसा यह भाव स्वाभाविक रूप में अभिव्यक्त होता है। इसलिए गोपियों के कंठ में यह वेद, और हृदय में उनके कंठ में जो कुछ बोलती है ना, वो ब्रह्म की चरम बात है। जैसे कृष्ण को जार कहा, कपट भूत इत्यादि कहा, गोपियों का मुख से जो निकला वो उनके कंठ में और हृदय में उनका जो भाव है, यही वेद का प्रतिपाद्य है। अतः तहत वेद अध्ययन इत्यादि की क्या आवश्यकता है, ऐसा प्रेम यदि किसी के हृदय में हो जाए तो क्या जरूरत है वेद पढ़ने, कोई जरूरत। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, बस कृष्ण नाम करो, कृष्ण नाम के द्वारा सब कुछ हो जाएगा, और रसिक भक्तों का, सात्विक वैष्णवों का संग करो, बस यही करने से तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। री मा पठ रिक, मा पठ जजुर, जजुर्वेद और सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद का पाठ मत करो, वो कृष्ण करने से ही सब तुम्हारा वेद पाठ हो गया, कुछ पाठ करने की जरूरत नहीं। मन लिया कि श्रीमद भागवत कोई पाठ कर रहा, और उसमें स्वाभाविकी गोपी गणों के अनुगत में भजन करने की लालसा जग गई, तो भागवत पाठ हो गया कि नहीं, इसके श्लोक पढ़ने से होंगे, वो भाव यदि आ गया तो यही वेद का प्रतिपाद्य श्रीमद भागवत का प्रतिपाद्य हो गया, उसका सब कुछ पढ़ना हो गया। गोपियां भागवत पढ़ी थी, आखिर भागवत का प्रतिपाद्य विषय ही गोपियों के भाव में इस रूप में सुन। इसलिए प्रेम ऐसा जो है उत्तम भक्ति, यही वेद का प्रतिपाद्य विषय है। यह जब हो जाए तो और किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। ये कैसे होगा? वैष्णव की सेवा अनुगत्य भावना से होगा और अपने प्रयास से भाई नहीं होगा। यहां पर किम ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा रसस्य, यहां पर ब्रह्म जन्म कहते हैं क्या? यहां पर ब्रह्म होता है वेद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, उसमें जो निष्णात हैं, ऐसा जन्म लेकर के हम क्या करेंगे? कोई भी हमको जरूरत नहीं है, बस हमको न धर्मम न धर्मम प्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या ज्ञान है, बस हम तो राधा कृष्ण की प्रचुर सेवा ब्रज में करेंगे। इसलिए वेदाध्ययन इत्यादि क्या हो सकता है? कोई भी हो सकता है। अथवा प्रमुख कहने से आत्मतत्व, आत्मतत्व को जान करके बहुत से लोग तो जानते हैं आत्मतत्व को, श्रेय स्थिति भक्ति मुदिष्य तेरी हो क्लेशियंत केवल जी बुधलब्धे ते शाम क्लेश देव नथा फूल तुम सावधान। आत्मतत्व को जान करके क्या होगा? कोई विशेष लाभ नहीं। जो लोग अपने अपने कोटि कोटि जन्मों में बड़े कष्ट स्वीकार करके आत्मतत्व को जानना चाहते हैं वो वंचित हो जाते हैं। कैसे? इसलिए कि मान लिया कि घोर अंधकार रात्रि हो, खूब अच्छी तरह से समझे, घोर अंधकार रात्रि, रात्रि में हम अपने हाथ से इसको देख करके समझ सकते हैं कि नहीं, जो मैं हूं, हमारा हाथ है, हमारा ये हाथ है, हमारी ये नाक है, ये हमारा पैर है ना? ये हम समझ जाएंगे। इसको कहते हैं आत्मबोध या आत्मतत्व को जानना, जान लिया, किंतु उसका रंग काला है कि सफेद है ये कैसे समझेंगे? उसमें कैसी बुद्धि है, क्या है नहीं है, ये कैसे समझेंगे? ये तो लाइट के मार्फत से ये सब जानना पड़ेगा। यदि सूर्य उदित हो जाए तो हम देखेंगे ये हम हैं, अब कटोलने की जरूरत नहीं है, हम काले हैं कि गोरे हैं किसी मालूम है, कैसा व्यक्ति है ये सब मालूम हो जाएगा। और सूर्य को भी देखेंगे और विश्व के सब चीजों को देखेंगे, यह है भगवत तत्व का ज्ञान। और जीवात्मा तत्व का ज्ञान है कि मैं हूं, आंख बंद करके भी देख रहा हूं कि मैं हूं। इसलिए आत्मतत्व का जो चेष्टा करते हैं जानने के लिए उनको कुछ हाथ नहीं लगता। आप जो केवल भगवत तत्व जानने के लिए चेष्टा करते हैं, कृष्ण तत्व और सब राधा तत्व इत्यादि परिकर तत्व, वो अपने को भी जान लेते हैं, अन्य कृष्ण को भी जान लेते हैं, प्रेम को भी जान लेते हैं, सब कुछ को जान लेते हैं। इसलिए ब्रह्म तत्व कि हमको क्या जरूरत है, इसलिए किम ब्रह्म जन्म भी, हमको वैसे ब्रह्म तत्व को जानने में अपने जन्म को देखा गंवाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ये भाव। अथवा ब्राह्मण का जन्म, ब्राह्मण का जन्म मैंने वेद पढ़ता है इसलिए उसको भी जरूरत नहीं है। क्यों? अनंत कथा रसस्य, अनंत कौन है? रास लीला करने वाले को अनंत लील कहते हैं, इसमें सब कुछ लीलाएं आ जाती हैं। वो अनंत की जो लीला है कौन सी? कथा रसस्य, रस की कथा है। वो कथा यदि हमको मिल जाती है तो हमको ये सब अभी जो बतलाया पहले, अपने आत्म अनुभूति की कोई जरूरत नहीं, ब्रह्म जन्म की जरूरत नहीं, ब्रह्मा के जन्म की जरूरत नहीं, वेद के अध्ययन की जरूरत नहीं, हमको किसी चीज की जरूरत नहीं। अच्छा, इस प्रकार असंख्य ब्रह्म जन्म में भी भगवान की कथा का यदि रस नहीं मिला, उसमें रुचि उत्पन्न नहीं हो गई, आसक्ति उत्पन्न नहीं है, तो ये जन्म बेकार है। मान लिया कि हम हरिनाम करते हैं, हरिनाम समस्त साधुओं में श्रेष्ठ है, यहाँ तक की सात दिन, किंतु कथा में रुचि नहीं है, कुछ दिनों के बाद में वो हरिनाम छोड़ देगा, साधु संग छोड़ देगा, अंत में फिर नीचे चला जाएगा माया। इसलिए हरि कथा प्रारंभ से ही श्रवणम है ना, पहले तो श्रवणम है, पहले श्रवण, इसके बाद में कीर्तन, पहले श्रवण है और अंत तक ये श्रवण रहेगा। जैसा उसका श्रवण होगा नाम भी उसी रूप में उदित होंगे, उसी के ऊपर में सब कुछ श्रवण के ऊपर में निर्भर है। इसलिए यदि हरि कथा में रुचि नहीं हुई, भगवान के रसिक कथाओं में दशम स्कंध इत्यादि में रुचि नहीं हुई, तो जन्म विफल हो गया। अथवा भगवान अनंत की कथाओं में जिनको रस की अनुभूति नहीं होती, उनका वेद अध्ययन, शास्त्रों का पढ़ना, ये सर्व दर्शन पढ़ना सब बेकार था, एकदम बेकार। जेतु वेद अध्ययन व तदुक्त कर्म के आचरण से, समूहों से भगवान की कथा में कोई रुचि उत्पन्न कभी हो ही नहीं सकती। इसीलिए बतलाया आराधितो हरि तपसा कथा किम, नाराधितो यदि हरि तपसा कथा किम, अंतर बहिर यदि हरि तपसा कथा किम, नांतर बहिर यदि हरि तपसा। कठोर साधन रूपी कष्ट को स्वीकार करने से, तप करने से, कष्ट स्वीकार करने से भगवान में प्रेम नहीं होगा। इसलिए यदि भगवान की आराधना हो गई तो तपस्या की जरूरत है, और यदि भगवान की आराधना ही नहीं हुई तो तपस्या से क्या होगा, बेकार का। और यदि अंतर और बाहर में भगवान है तो तपस्या की कोई जरूरत नहीं, और यदि बाहर और भीतर भगवान है ही नहीं है तो तपस्या करके ही लाभ क्या होगा, उसे तो ऐसा होगा नहीं फल। इसलिए सब समय वो बेकार है। दूसरी बात, जैसे नाव, यदि किसी नदी को पार करना हुआ तो नाव पर चढ़ करके उस पार हो जाते हैं, फिर
नाव को छोड़
कहीं ऊंचा चढ़ना है तो सीढ़ी से ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर सीढ़ी को छोड़ देते हैं ना? कहीं हमको अंधकार रास्ते से गुजरना पड़ता है, दीप को ले लेते हैं, अंधकार को पार करके फिर दीप को रख देते हैं या प्रकाश में आ जाते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। प्रकाश में दीप की कोई भी आवश्यकता नहीं, जहां नदी को पार कर गए नदी की आवश्यकता है। ठीक उसी तरह से यदि किसी को भगवान के प्रति और भगवान की कथाओं के प्रति रुचि हो गई, प्रीति हो गई, तो और सब जितने अभी तक जो थे साधन उनकी क्या जरूरत रह गई, कोई जरूरत। मूल में वही चीज होनी चाहिए, भगवान की कथाओं के प्रति रुचि और वो भगवान के प्रति प्रेम, गोपियों जैसा, तो और कोई चीज की आवश्यकता। ये होगा केवल मात्र वैष्णवों के संग में, रसिक वैष्णवों के, सत्सद वैष्णवों के संग में। इसलिए मुझे ब्राह्मणत्व या ब्रह्म इत्यादि का भाव नहीं चाहिए। इसलिए कहते हैं कि यह भाव जो गोपियों का है स्वाभाविक है और यही रूढ़ भाव है। इसलिए गोपियों के प्रेम की महिमा का वर्णन करना हम लोगों के साथ में नहीं, हम लोग चाहते हैं कि इसको प्राप्त करें। अगले दिन के आज अभी हम लोग चलेंगे
कोयला वाली
गली। चतुर्मुख अथवा ब्रह्म माने शब्द ब्रह्म, या ब्रह्म माने यहाँ पर ब्राह्मण जन, वेद इत्यादि जो पढ़ते हैं वो, इन सब में भी यदि अनंत के कथा में रसम को नहीं है तो बेकार था। ऐसे जन को हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते हैं पुत्र नहीं चाहते। और वे लोग कथा रसस्य, कथा में जिनको रस है, भगवान कृष्ण की मधुर लीलाओं में, रास इत्यादि में, और बाल्यपन से लेकर और जितनी भी रस की बातें उसमें बात्सल्य सख्त और मधुर रस की गाते हैं। इन कथाओं में जिनको रस है वो ब्रह्मजन्म में क्या जरूरत है। अब उल्टा ले नाराधितो यदि हरि सत्ता तथा की आराधितो यदि हरि सत्ता। यदि भगवान की आराधना करते तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं। उसी प्रकार के भगवान की लीला कथा में जिनको रस उत्पन्न हो गया उनके लिए ब्रह्मजन्म की क्या जरूरत है। और जिनको भगवान की लीला कथाओं में रस है वो वेद इत्यादि अध्ययन के लिए सर्वत्न अध्ययन के लिए वो समय क्यों बर्बाद करें। कोई भी जरूरत नहीं। ये दोनों में आए। और सर्वथा गोविंद पदार बिंद मकरंद लंपट लोग हैं। गोविंद श्री गोविंद पदार बिंद मकरंद लंपट लोग हैं मैंने रसिक भक्त वही कथा रसत्व जिसका चीज कर लोगों के लिए ब्रह्म जन्म भाव के उपयोगी नहीं है। भक्ति के लिए चाहिए अनुकूल। जब भक्ति राधांगा भक्ति में चार चीजें होती हैं। एक होता है भावमय भाव संबंधी भाव अनुकूल और भाव अविरुद्ध और एक भाव विरुद्ध। ये पांच चीजें होती हैं। जब तक ये सब चीज नहीं समझेंगे तब तक सदा बढ़ जाए। भावमयी किसको कहेंगे स्थाई भाव संबंधित जो भाव है वो भाव है। जैसे सख्त भाव है मधुर भाव है ये भाव है। उनकी क्रियाएं उनकी सेवाएं वो सब चीज है भाव है। भाव संबंधी मैंने भाव से संबंध रखने वाली जो चीजें वो क्या चीज उनकी जो क्रियाएं हैं उनकी जो सेवाएं हैं वो सब भाव संबंध है। जैसे भाव संबंध किसको कहेंगे वही आगे चल करके भावमय हो जाए। जैसे गुरु पदार्थ से लेकर 64 प्रकार की भक्ति के जो अंग हैं उसमें गुरु पदार्थ और दीक्षा शिक्षा और विसंभयन गुरु सेवा इत्यादि जो 10 जो भक्ति सामने सिंधु में पहले के जो अंग है मालूम पड़ता है कि ये सब भक्ति क्या है। कृष्ण से क्या संबंध है गुरु तुमने धारण किया गुरु के सेवा किया कृष्ण के लिए किया था किंतु नहीं ये भाव संबंधी है। गुरु जी की शिक्षा दीक्षा उनके प्रति श्रद्धा करने से ये भाव संबंधी होकर के पीछे यही भाव है। ये हो गया भाव संबंधी से भाव और भाव अनुकूल। द्वारका ध्यान भाव के विपरीत है। द्वारका का ध्यान रुक्मिणी का ध्यान ये सब और ऐसे ही सब है ये सब प्रतिकूल है। इनको यदि हम आचरण करेंगे तो उनका भाव संबंधी और भावमयी का चौपट हो जाएगा। यानी भाव के अनुकूल जो है जैसे तुलसी जी की सेवा अनुकूल है। भक्तों का चरित्र गान गिरिराज गोवर्धन की वृंदावन की परिक्रमा और यदि द्वारका की परिक्रमा हो तो भाव का तत्कूल हो जाएगा इनके लिए। और जो द्वारका का भाव चाहते हैं उनके लिए वो अनुकूल। यदि कोई राधा कृष्ण का ये मधुर रस चाहता और नाम रख लिया अपना वैदेही सर। वैदेही सर मैंने क्या
पिताजी की
वैदेही है पिताजी और उनके शरणागत है नहीं तो वैदेही सर मैंने क्या हो गया पिताजी। अब ये नाम यदि कोई मधुर रस का कृष्ण का भक्त होगा तो उसको सप्त में फलेगा। देखिए रुक्मिणी, रुक्मिणी प्रिय नाम रख दिया या रुक्मिणी दासी रख दिया तो फिर क्या होगा, उसको नाम ये फलेगा, कहे हमारा नाम बदल दीजिए गुरु जी। और कोई आराधा प्रिया, आराधा दासी, विशाखा दासी, ब्रज प्रिया, ऐसे नाम। इसी तरह से जितनी अनुकूल चीजें हैं वही उसको ठीक चाहिए, नहीं तो प्रतिकूल हो जाने पर गर्व हो जाएगा। तिलक धारण, गले में कंठी, ये प्रतिकूल भी नहीं है, भाव संबंधी भी नहीं है, किंतु कुछ दिनों के बाद में ये भाव संबंधी और अंत में भाव नहीं बन
जाएगा।
एकादशी व्रत, दामोदर व्रत, ये सब
भाव कुछ।
अच्छा, और भाव के विरुद्ध जो है वही जो बतला है उनको दूर रखना पड़ेगा। यदि कोई गोपी भाव चाहता है और दंड कसरत बैठ से खुद करता है, ऐसा करता है तो हो जाएगा नहीं होगा। यदि खूब अत्यंत विराट वैरागी बाबा हो, शीघ्र वैराग हो तो फिर क्या होगा, तो उसमें भक्ति जलने की संभावना है। यदि शीघ्र वैरागी हुआ सब कलाओं में निपुण होना चाहिए, 64 कला में यदि वो रसोई नहीं खोज की तरह से बना सकता है, यदि सुंदर उसमें हाथ नहीं गा सकता, 8 दिन साल में राधा कृष्ण की सेवा नहीं कर सकता, राधा कृष्ण की कोमल है ना चित्तवृत्ति, चित्तवृत्ति भी ऐसी कोमल चाहिए, आर्ट भी उनका चाहिए, रसोई बनाने का, स्नान कराने का सब भाव उनका चाहिए, ये गुरु को पहले प्रयोग करेगा। अब तब फिर जो इन सब सेवाओं से दूर रहता है, वैष्णव का संग नहीं, कोई इससे मतलब नहीं, तो तब फिर उसको कैसे होगा, इसलिए वो मुक्ति का उपास है। ऐसे लोग मुक्ति के तरफ में जाते, उनको साई की मुक्ति भी हो सकती है, और यदि किसी कृष्ण की उनकी कृपा हो जाए तो ना है तो सामित्य भी हो सकता है, सारूप भी हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। इसलिए यदि जिस चीज का वो उपासक है वात्सल्य का, तो यशोदा जैसे भाव लाना पड़ेगा उनकी किंकरी के रूप में, दास कहा है तो हनुमान जैसा, सखा का है तो सिद्धाम मधुमंगल सुबल इत्यादि की भावना, इस तरह से ये होता है। तो वही कह रहे हैं यहां श्री कृष्ण पदारविंद मकरंद लंपट कौन है, सबसे अधिक गोपियां हैं, इससे बढ़कर के ओ चरम सीमा तक और लोग हैं, किंतु यही सबसे अधिक चरम है। जब तक गोपी भाव नहीं आए, यही उद्धव जी इस श्लोक में बदला है, एक संहितम गो को बदले, संसार में इन समस्त विश्व में यहां तक कि गो गोलोक ब्रज में थी तक, और यहां गोपियों का जन्म धारण करना ही भूमि मने यहां पर सार्थक है, और सब क्या क्या है विफल जन्म। तो यहां पर उद्धव जी कह रहे हैं कि अहो इन गोपियां, ये गोपियां कहां और मैं कहां, मैं ब्रह्मचर्य में नहीं जाता, क्योंकि चरण की धूली गोपियों के द्वारा हम अभिषिक्त नहीं हो सकते, मैं वेद अभ्यास नहीं करना चाहता, अरे गोपियों के कंठ और हृदय में ही वेद का सार मुक्त रस यहां पर वहां, यहां और यहां पर उनका है, इस वेद में क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा, अभी वो कर्मकांडी जैसे स्वाहा स्वाहा कर यही होगा, या उपनिषद में चले जाएंगे तो हम ब्रह्मास्मि इत्यादि होगा, इसलिए कि ब्रह्म जन्म भी हमको ब्रह्म जन्म की तनिक भी आवश्यकता नहीं है, शब्द ब्रह्म की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं मैं चाहता हूँ कि गोविंद कथा रहस्य अर्थात गोविंद क्या वो पद हाँ पदारविंद मरंद लंकट गोपी जन्म हमारा कहीं हो जाए या उनकी कथाओं में हमारा यदि रस हो जाए हमारा सब कुछ हो जाए हम यही चाहते हैं और कुछ कोई जन्म इत्यादि नहीं चाहते हैं। अब इतना समझने पर कि इस जगत में सबसे बढ़ करके जन्म सफल यदि किसी का है और आंखें किसी की यदि सफल है तो किसकी है गोपी ने? और वही गोविंद पदारविंद मकरंद के सबसे अधिक योग्य अधिकारी है गोपी। इनकी कथा में यदि रीति हो जाए तो हमको आशा है कि हमारी मनोरथ भी पूर्ण हो जाए। इसके बाद ही ये श्लोक है प्रेमा प्रियो ब्रह्मचरी वर्गीचार गुप्ता कृष्णे स्वैच परमात्मूढ़ भाव नमस्कार भरुको अभी दिशो की साक्षात श्रेय समय।